देख लीजिए, आपको चाहिए होगा फ़ैन, तो मच्छर काट रहे होंगे ना? जी जी कंफर्म किया और अच्छा सच बोल रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से उपदेश अमृत के बारे में। तो श्रील रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या है? श्री उपदेश अमृत। तो किसने किसने पढ़ा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है। तो प्रभुपाद ने श्रील रूप गोस्वामी के दो ग्रंथों का अनुवाद किया था या किया है। एक है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रस को हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भक्ति रस का सागर है जिसका वर्णन रूप गोस्वामी ने किया है। और जब वो बुक छप के जब आया था, प्रभुपद प्रवचन दे रहे थे लॉस एंजलिस में, तो प्रभुपद ने वो बुक को अपने हाथ में लिया और कहा कि ये जो इस्कॉन की कानून की किताब है, तो हमारे जो भगवत भक्ति है उसका आधार भक्ति रसामृत सिंधु है। और दूसरा ग्रंथ है उपदेश अमृत, जो श्रील प्रभुपाद ने रूप गोस्वामी के इन दो ग्रंथों को चूज किया। बल्कि रूप गोस्वामी ने 40-50 से अधिक ग्रंथों की रचना की है। इन 6 गोस्वामियों ने सबसे अधिक ग्रंथ या श्लोका किसी ने लिखे हैं तो वो जीव गोस्वामी हैं, जिन्होंने व्यास देव से भी अधिक श्लोकों की रचना की, 5 लाख से अधिक। जीव गोस्वामी सबसे छोटे थे आयु में, लेकिन इतने शक्तिशाली थे। वो चलते भी थे तो चलते चलते श्लोकों की रचना करते थे और अपने दिमाग में रखते थे। जब टाइम मिलता था उनको 2 दिन के बाद, तो जितने श्लोकों की रचना की है जाकर लिखते थे। अब सोचिए कितने बुद्धिमान थे ये आचार्य, और उन्होंने इतनी मेहनत करके ये ग्रंथ दिए हैं गोस्वामियों ने, ताकि क्या करे, उन शिक्षाओं को समझकर उनका पालन करके हम भगवत भक्त बने। तो इतना जो भी कार्य जो गोस्वामियों ने किया है, वो उनका उद्देश्य एक यही है कि हम वैष्णव बने। किस चीज के लिए ये सब किया है? वैष्णव बनने के लिए। क्योंकि इस जगत में सबसे बड़ी कोई पोजीशन है तो वो किसकी है? वैष्णव की। हम यहाँ बैठे हैं आश्रय क्लास में, या फिर टेम्पल्स जाते हैं, या कई प्रकार की सेवाएं करते हैं, उन सब का एक में उद्देश्य है कि मुझे वैष्णव बनना है, भगवान का भक्त बनना है। लेकिन जैसे जैसे हम मंदिर आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कुछ साल बिताते हैं, कुछ दिन बिताते हैं, तो हमें लगता है कि मैं वैष्णव या वैष्णवी बन गई या बन गया। तो ऐसा नहीं है। तो जब तक हम महान वैष्णवों को नहीं समझेंगे, उनके कार्यकलापों को नहीं समझेंगे, उनकी शिक्षाओं को नहीं समझेंगे और अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, तो वैष्णव बनना असंभव है। बड़े बड़े देवी देवतागण हमेशा ये इच्छा रखते हैं हमें वैष्णव बनना है, बल्कि वो इच्छा ये नहीं रखते वैष्णवों के सेवक बनना है, ये इच्छा रखते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। तो एक बार एक व्यक्ति आए, और जो भी आता था तो वो कहते थे मैं कृष्ण का सेवक हूँ। तो भक्ति सिद्धांत महाराज आते थे मिलने और कहते थे ये रहा कृष्ण प्रसाद, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, अभी बाद में मिलते हैं आपसे। लेकिन कोई आता था मिलने, वो अपना इंट्रोडक्शन देता था कि मैं कौन हूँ, कृष्ण के भक्तों का भक्त हूँ, सेवक हूँ। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते आज पूरे दिन मेरे पास कुछ काम नहीं है, आप बैठो हम मिलके कृष्ण कथा करेंगे, कृष्ण नाम का उच्चारण करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये सीक्रेट है वैष्णव बनने के लिए, वैष्णव के अनुगत होना। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद ने अपने आप को इन महान आचार्यों का दास के रूप में स्वीकार किया है कि तांदेरा चरण सेवी भक्त सनेवास। उन वैष्णवों की चरणों की सेवा करना, महान आचार्यों की और भक्तों के संग में निवास करना, ये श्रील प्रभुपाद ने स्वीकारा अपने जीवन में। और उन्होंने ये जो गोस्वामीज हैं उनके ग्रंथों को हमें सरल रूप से प्रदान किया। इसलिए कहते हैं कि रूप रघुनाथ पदे हये बे अकुति कबे हम बुझे बसे युगल पीरति। ये गीत आपने सुना है, गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, उसके आखिरी लाइन है। तो ये गीत बड़े पावरफुल है। प्रभुपाद एक जगह कहते हैं ये सॉन्ग इतने शक्तिशाली है वज्र से भी अधिक पावरफुल है। आपके हृदय में जो भौतिक भोग आदि या फिर दोष और पाप आदि के जो पहाड़ है उनको ये सॉन्ग क्या करते हैं, चकनाचूर करते, तोड़ देते हैं, वज्र के समान है। तो वैसे ही प्रभुपाद ने इन ग्रंथों का अनुवाद किया और हमें ये ग्रंथ दिए, विशेष रूप से रूप गोस्वामी के दो ग्रंथ, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत। हाँ, ये अमृत उपदेशों का अमृत है, जिससे हम मरने वाले हैं तो हमें वो क्या करता है, अमृत जगाता है या अमर बनाता है। तो ऐसे रूप गोस्वामी ने उपदेश अमृत लिखा और उसमें केवल 11 श्लोक हैं। कितने?
11।
हाँ, ज्यादा बोला नहीं उन्होंने, कितनी चीजें लिमिटेड अपनी वाणी का इस्तेमाल किया, कम बोला लेकिन कैसे बोला, मधुर और बहुत सटीक। नहीं, कई बार हमें बोलने के लिए कहा जाता है तो हम अधिक बोलते हैं लेकिन उचित नहीं होता, अनुचित होता है। तो ऐसे प्रभुपाद या रूप गोस्वामी ने केवल 11 श्लोक दिए हैं और इन 11 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु या गौड़ीय संप्रदाय का सारी शिक्षाओं का निचोड़ है। जैसे हम कहते हैं ना, शिक्षा सकम, जो महाप्रभु के 8 श्लोक है उसमें सारे ग्रंथों की शिक्षा है। तो उसी प्रकार से रूप गोस्वामी स्वामी ने 11 श्लोक दिया है। तो ये जब बुक छाप के आया प्रिंटिंग प्रेस से, तो प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद ये बुक तो केवल भक्तों के लिए है, इसमें तो बहुत सारी कठिन कठिन शिक्षा के बारे में बोला गया है। प्रभुपाद ने पूछा, इन्होंने पूछा कितनी छापी है, उन्होंने कहा बस प्रभुपाद कुछ बहुत कम बुक्स उन्होंने प्रिंट की कि डिवोटी सर्कल में बस इनका वितरण होगा। प्रभुपाद ने कहा नहीं, हजारों की संख्या में छापो, ये हर एक व्यक्ति के पास जाना चाहिए उपदेशामृत। तो फिर कई हजार छापी और डिस्ट्रीब्यूशन उनका शुरू किया। तो प्रभुपाद चाहते थे कि ये जो उपदेशामृत है उसका भी हम अध्ययन करें और उनकी शिक्षाओं को समझें। गोस्वामी बनने के लिए या भक्त बनने के लिए ये उपदेशामृत बहुत पावरफुल बुक है। प्रभुपाद के एक शिष्य है हनुमत प्रेषक स्वामी, सन्यासी हैं, गुरु हैं इस्कॉन में। आप कभी भी उनको देखेंगे ना, एक बुक उनके हाथ में है, जैसे हम बिड़ बैग हमेशा रखते ना गले में, वो महाराज एक बुक हमेशा साथ रखेंगे, चाहे मंगल आरती जा रहे हो या दिन में कहाँ चल रहे हो या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हो, एक बुक उनके हाथ में रहती है। वो कौन सी है? उपदेश अमृत। इतना अनुराग है। तो महाराज भी बड़े अद्भुत थे। हम मायापुर में रह रहा था मैं 3-4 महीने, तो मैं सेकंड फ्लोर में रहता था सीनियर ब्रह्मचर्य आश्रम में, महाराज फर्स्ट फ्लोर में, तो हम ऊपर रहते थे। तो जब भी हम नीचे आते थे सीढ़ियों से तो उनका कमरा था महाराज का, और महाराज अपने जो रूम है उसकी कोई विंडो बंद नहीं करेंगे कभी, कोई कर्टन्स नहीं लगाएंगे, दरवाजा सब खुला रखेंगे। है, हमने पूछा, रोज शाम को क्लास लेते थे गीता की हमें ना, हमने पूछा कि महाराज आप क्यों अपने सारा रूम, जनरली सब लोग अपने रूम में बैठ के ना बंद करके बैठते हैं, आप क्यों? कहते हैं ये सब बंद करूंगा हाँ तो कैसे मुझे भक्त यदि मुझे वॉच करेंगे तो मैं माया से बचा रहूंगा, है ना, इसलिए मैं क्या करता हूँ, सारी चीजें खुली रखता हूँ। हाँ, तो हम हैरान होंगे। तो ऐसे अमेजिंग सन्यासीज हैं जो हमेशा ये उपदेश अमृत कर रखते थे। तो उसी में रूप गोस्वामी ने सबसे पहला जो श्लोक है उसमें कौन सा श्लोक है सबसे पहले, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषहेत धीर। तो कोई व्यक्ति इन वेगों का उन्होंने वर्णन किया है, मैं भी 6 वेगों का वर्णन किया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो सबसे पहले रूप गोस्वामी ने उस बुक में शब्द यूज किया है, वो कौन सा है, वाचो वेग। तो वाचो वेग का मतलब ही है, वेग का अर्थ है फोर्स या फिर बल। तो रूप गोस्वामी कहते हैं जैसे वेग, जैसे अब देखो पानी को वेग होता है ना, तो वो वेग यदि प्रॉपर उसको हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, दिशा नहीं देंगे, तो कितने सारे चीजों का वो नुकसान कर सकता है। उसी प्रकार से गाड़ी को भी वेग होता है, और आजकल वो पेट्रोल भी आ गया, स्पीड क्या है, स्पीड पेट्रोल भी होता है ना, मोर एक्स्ट्रा पावरफुल होता है। तो उसी प्रकार से यदि ये जो वेग है, वेग का मतलब है बल या बहुत शक्ति, यदि इसको हम सही चैनल में नहीं मार्गदर्शन करेंगे या डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो वो व्यक्ति के जीवन को तहस नहस कर सकता है। तो इसलिए, और उत्पात मचा सकता है हमारे जीवन में। तो उन्होंने 6 वेगों का वर्णन किया है। पहला वेग है वाणी। कौन सा है वेग? वाणी का वेग। बल्कि ये जो सारे इंद्रियां हैं और उनके जो विषय हैं, अभी वाणी कौन सी इंद्रियां हैं? कर्मेंद्रियां हैं, है कि नहीं? जिह्वा से हम स्वाद लेते हैं, तो वो ज्ञानेंद्रियां हैं एक प्रकार से। तो ये जो वाणी है, बोलते हम मुंह से, ये कर्मेंद्रियां हैं। और जो भक्ति विनोद ठाकुर है वो अपने गीत में लिखते हैं, महाप्रसादे गोविंदे के बाद क्या गाते हैं हम, शरीरा आगे क्या है, हाँ मतलब गाते कि नहीं गाते प्रसाद से पहले। एक भक्त था, एक बार फास्टिंग था किसी टेम्पल में। अभी जब कोई फेस्टिवल आता है, आनंद भी होता है और दुख भी होता है। दुख इसीलिए कि प्रसाद में और भक्त में बहुत अंतर होता है, है ना? हम हमेशा भगवान और हम में क्लोज रहना चाहते हैं। उसी प्रकार से प्रसाद से भी इतना प्रेम करते हैं कि विरह सहन नहीं होता। अभी कल एकादशी है, अभी आ रही है थर्सडे, तो आज से ही चिंता लगनी शुरू होती है, अरे कल के बाद परसों एकादशी आ रही है। तो हमेशा हम लोग चिंतित रहते हैं और सोचते रहते हैं ना। तो वहाँ ये जो प्रेयर है, वो जो डिवोटी था एक टेम्पल में, एक फास्टिंग हुआ और जैसे समय आया ब्रेक करने का, सुबह से बेचारा भूखा था और निर्जला, जब रात शाम को अभिषेक हो गया तो बारंबार सोच रहा था प्रसादम हॉल कब भागूंगा, प्रसादम हॉल में कब भागूंगा। तो जब समय आया तो प्रसादम हॉल में पहुंचने के लिए टेम्पल हॉल से प्रार्थना शुरू कर दी, महाप्रसादे गोविंदे। पहुंचते पहुंचते खत्म हो गई प्रार्थना सीधा। एक तो उनसे एडवांस डिवोटी था, वो इतना एडवांस कि बैठा प्रसाद पाने के लिए और दो ही शब्दों में प्रेयर को खत्म कर दिया, महा और निताय। पहला शब्द क्या है, महा, और जय निमाय जय निताय। तो इस प्रकार से हम इन वेगों को सहन नहीं कर पाते, हमें बहुत कष्ट होता है। लेकिन वास्तव में मनुष्य, प्रभुपाद ने कहा ना, ह्यूमन कैन कंट्रोल, एनिमल कैनॉट। तो जो मनुष्य है वो कंट्रोल कर सकता है, पशु नहीं कर सकते। और इसलिए हमारे पास ये सारी सुविधा भगवान ने प्रदान की है। तो जो ये इंद्रियां हैं, शरीर अविद्या जाल, शरीर अविद्या का जाल है, जाली है, नेट है जिसको कहते हैं ना, शरीर अविद्या जाल, जड़े इंद्रिय ताहे काल। और ये जो 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिया वास्तव में काल है हमारे लिए, भयावह काल। भगवान कहते ना कि मैं काल या मृत्यु के रूप में आता हूं। तो ये इंद्रिया हमारे लिए काल है, और इन इंद्रियों के कारण ही, इनके वेगों को कंट्रोल न करने के कारण ही क्या हुआ है, जीवे फेले विषय सागरे। जीव फेले मीन्स गिर गया, फेंका गया उसे कौन से सागर में, विषय के सागर में। और विषय क्या है, विषय विष शब्द से आता है। तो यदि विषयों को हम उपभोग करते हैं तो हम वास्तव में विष का पान कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है जीवे फेले विषय सागरे। नरोत्तम दास ठाकुर ने दूसरे गीत में कहा, विषय विषानले दिवा निशी हिया जोले, जुड़ा इते ना कहनो उपाय की। हे कृष्ण, ये जो विषय है ये मुझे जला रहे हैं, दिन रात मुझे अपने आप को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये शरीर 10 इंद्रियों का समुच्चय है। तो ये जो इंद्रियों को हटा देंगे तो शरीर वास्तव में नहीं रहेगा, नहीं, अलग अलग हो जाएंगे सारे पार्ट्स। ये जो इंद्रिया, सारे इंद्रियों का जो समुच्चय है उससे ये बॉडी बना है, हाँ, बंच जो इंद्रियों का है। तो इसलिए ये जो वेग है इंद्रियों का, इनको सहन करना बहुत आवश्यक है। और पहला वेग कौन सा बोला है उन्होंने, वाणी, वाणी का वेग। हाँ, ये इतना आसान नहीं है, बल्कि वेग का दूसरा अर्थ होता है, हाँ वेग का दूसरा अर्थ आचार्यगण कहते कि आसक्ति है ना, वेग का मतलब दूसरा क्या है, आसक्ति, अटैचमेंट। इन वेगों के कायदे से हम बोलने में बड़े आसक्त होते हैं, देखने में आसक्त होते हैं। तो इस प्रकार से हाँ शास्त्र कहते हैं कि ये जो वाणी का वेग है ये बहुत प्रभावशाली है, और जिसको हमें रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सदैव एक साधक या जो भी डिवोटी भक्ति में लगा है उसको सदैव प्रयासरत होना चाहिए। और ये जो वाणी है वो कभी खाली नहीं बैठेंगे, हम अकेले होंगे तो भी बड़बड़ते रहेंगे। हाँ, मतलब ये वाणी एक प्रकार से एक आसुर के समान है, यदि इसका आप सही रूप से इस्तेमाल नहीं करते हो तो इतना डेंजर है कि आपका जीवन वो नष्ट कर सकता है और दूसरों का जीवन भी वो बर्बाद कर सकता है, दोनों चीजें ये कर सकता है। हाँ, ये वाणी इतनी शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, ये आसुर के समान है। जैसे आप सुनते ना वो कि एक व्यक्ति एक साधु के पास गया और उन्होंने कहा मुझे ना जो मांगू वो चाहिए, उन्होंने क्या दिया उसको, एक आसुर दिया, एक मंत्र दिया कि जब करोगे तो एक आसुर प्रकट होगा और जो आप इच्छा करोगे वो तुरंत पूर्ति करेगा, लेकिन खाली रहेगा तो आपको खा जाएगा। फिर वो परेशान हो गए, खाली रहता था वो और खाने के लिए तत्पर हो गया, तो फिर वो फिर से उस साधु के पास जाते थे, साधु क्या देते उसको, सीढ़ी देते हैं। तो उसी प्रकार से यदि इस वाणी का हम सही इस्तेमाल करना नहीं सीखते तो धीरे धीरे हमारे जीवन में ये जो वाणी है बहुत भयावह स्थिति ला सकती है। तो वाणी का दुरुपयोग करने से हम अपराध कर सकते हैं, और बड़े बड़े जो योगी ऋषि मुनि आदि हैं वो गिर गए हैं अपने आध्यात्मिक जीवन से भी, किसके कारण, इस वेग को सहन न करने के कारण। इसको सहन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए नहीं बोला है, क्या बोला है, इसको सहन करो, विषय है तो धीरा, धीर व्यक्ति के अंदर सहनशीलता होती है, इसलिए शिवजी को क्या बोला गया है, धीर है, धीर पुरुष है, भगवत गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद ने दिया है कैसे शिवजी धीर है। तो इसी प्रकार से ये जो वाणी है जिसका इस्तेमाल हमें उचित रूप से या उचित ढंग से करना चाहिए, बल्कि ये बोलने के लिए कितनी चीजों का इस्तेमाल होता है, दो ओठ और एक जीवा, छोटी छोटी चीजें हैं, नहीं कितने, इनमें कोई हड्डी वगैरह नहीं है, बहुत सॉफ्ट चीजें हैं बॉडी की, लेकिन जब ये इतना प्रभाव डालती है कि बड़े से बड़े चीजों को काटने का सामर्थ्य रखती है, रखते कि नहीं। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमारा नेचर ही है कि हम हमेशा बातें करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। जैसे जैसे हम रहते हैं ना वहां, तो वहां सुबह सुबह बहुत सारे कुत्ते घूमते रहते हैं, कुछ काम नहीं है तो भी क्या करेंगे, क्या करेंगे, शर्मा क्यों रहे आप, बार्किंग बहुत चिल्लाते रहेंगे गली के कुत्ते, अभी कोई उनको तंग नहीं कर रहा है, कोई उनके पीछे नहीं लगा है, लेकिन न चाहते हुए भी हाँ हमेशा बोलते रहेंगे या बार करते रहेंगे। तो ये उसी प्रकार से है, भागवत में ऐसे लोगों को कहा गया है जो सदैव हाँ भगवान के अलावा दूसरों का गुणगान करने में इस वाणी का इस्तेमाल करते, उनको कहा गया है शोविड वराह उष्ट्र खरे, हाँ कि वो किसके समान है, शो मीन्स कुत्ता, वेट वराह मीन्स, अभी कितने पावर, भागवतम कभी आपसे ये नहीं करता, समझौता नहीं करता, भागवतम बिल्कुल सीधा साधा सीधा है। हाँ मतलब भागवतम की एक सुंदरता है, इसलिए उसका नाम क्या है, श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् का मतलब है सुंदर, और भागवतम मीन्स जो भक्त और भगवान के बीच में जो आदान प्रदान का संबंध है उसके कारण उसको भागवतम कहा गया है। तो भागवतम की सुंदरता क्या है कि वो खाली पे लिए आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, वो कहते ना चापलूसी करता है कोई व्यक्ति, भागवतम हमारी चापलूसी नहीं करता, भागवतम हमें सही सही चीजें बताता है, भागवतम हमें कृष्ण भक्ति और अहेतु की होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और चीज नहीं बताता। इसलिए भागवतम को अमल पुराण कहा गया है। तो आज सब भागवतम कहता है कि जो वाणी भगवान के अलावा किसी और का गुणगान करती है, तो वो जो वाणी है वो वास्तव में उस उन पशुओं के समान है जो हमेशा, एक तो कुत्ता हमेशा बोलते रहता है शोविट वराह, विट वराह मीन्स मल खाने वाला सुवर, और वुस्त्र, वुस्त्र मीन्स जो कैमल है, ऊंट है, और खरे, खरे मीन्स गधा। तो ये चार पशुओं की तुलना की गई है जो व्यक्ति वास्तव में वाणी से कृष्ण और उनके भक्तों की प्रशंसा नहीं करता, उनकी सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं करता। और हम वास्तव में देखा जाए अपने पूरे दिनचर्या में कितना हम इस्तेमाल करते हैं अपनी जीवा का। यदि हम गंभीरता से सोचें, वो दो घंटे बोला गया है 16 माला करने के लिए, उसमें भी जीवा मोटी हो जाती है सुबह सुबह, वो हिलती नहीं अपनी जगह से, हिलती है क्या? उसको पूरा जोर लगाना पड़ता है फिर भी वो हिलती नहीं है। तो मतलब ये जो वाणी और हिलेगी, हिलती कब है? जब भगवान से अलावा बातें करना चाहते, स्पोर्ट्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, पड़ोसियों के घर में क्या हो गया, ऑफिस में क्या हो गया, उस भक्त के साथ क्या घटना घटी, इधर उधर की चीजों के लिए ये बिल्कुल लप लप करती हैं। मतलब कई बार होता है ना, जैसे हम स्कूल में थे या कुछ लोग बहुत बोलते रहते थे, तो कहते इसका जो रेडियो है बंद करो, बहुत रेडियो हमेशा ऑन रहता है, कब इसका रेडियो बंद होगा, लोग परेशान होते हैं ना कई बार। तो हमेशा हमारा रेडियो ऑन करने के लिए महाप्रभु ने बोला है कीर्तनीय सदा हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाप्रभु ने तो बोला है कि आपका जो रेडियो, आजकल के जो रेडियो है वो 24 आवर्स ऑन रहते हैं, हमें भी अपना रेडियो ऑन करने के लिए रखा है, लेकिन कीर्तनीय सदा हरि, हमारा रेडियो ऑन रहता है भगवान के अलावा बाकी सब गपशप करने में। कई लोगों का रेडियो तो इतना ज्यादा एक्टिव रहता है कि वो सोएंगे तो भी बोलते रहते नहीं, रात को भी। मैं अभी मायापुर था तो हम सो रहे थे, तो कुछ डिजिटिस्ट है और रात को भी बोलते जा रहे थे मैं जिस रूम में रुका था, तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है मैं वैसे डर गया अचानक, और कंटिन्यूसली बोलते जा रहा था वो जो डिवोटी है। तो मतलब डिवोटी नहीं, कर्म जीवन में भी हम देखेंगे तो वहां भी इतने एक्टिव है ये वाणी कि सोएंगे तभी भी बोलते रहेंगे। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि क्यों हम ये बोलना चाहते हैं, क्या कारण है कि हमेशा हम लप-लप करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें एक विशेष प्रकार का आनंद मिलता है। क्या मिलता है? आनंद, एक विशेष प्रकार का आनंद इससे मिलता है, और उससे हम ये दिखाना चाहते हैं, कृष्ण के साथ कंपटीशन करना चाहते, स्पर्धा करना चाहते। कृष्णा, कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं सबका ज्ञाता हूं, नोअर हूं, मतलब मैं सब चीजों को जानता हूं, भूत भविष्य वर्तमान को मैं जानता हूं। तो लेकिन हम बोल बोल के ये दिखाना चाहते, कृष्णा आप ही नहीं जानते, जानने वाला यहां भी एक दूसरा व्यक्ति है, आप उसको नहीं जानते हैं। हम भी अपने सर्कल में क्या दिखाना चाहते हैं, बोल बोल के कि हाँ प्रभु, हाँ आप ही नहीं, मैं भी ज्ञाता हूं, मैं भी जानने वाला हूं, मैं भी त्रिकालदर्शी हूं नहीं, भगवान त्रिकालदर्शी है। तो जैसे कोई होता है ना आजकल, ये जो जनरल नॉलेज आदि है वो सब क्या है, भगवान के साथ कॉम्पिटिशन ही है कि हम भी जानते हैं, हम भी ज्ञाता हैं। तो इसलिए हम ये स्थापित करना चाहते हैं कि वास्तव में कृष्ण के साथ हम स्पर्धा करना चाहते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं दृष्टा हूँ। तो इस प्रकार से भगवान गीता में कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता है इति मन्यते, कि अहंकार के कारण मूर्ख व्यक्ति अपने आप को कर्ता समझता है। तो इस प्रकार से हम अज्ञान में है लेकिन हम जानते नहीं हैं। तो कलियुग में सबसे अधिक लोग कुछ अच्छा लगता है लोगों को तो बोलना अच्छा लगता है। हर कोई माइक अपने हाथ में से बाहर देखो, माइक किसी के हाथ में आ जाए तो छोड़ेगा ही नहीं। कुछ कुछ जगह होता है ना, फिर हमें पता रहता है इनके पास माइक नहीं जाना चाहिए। माइक इनके हाथ में गया तो फिर हमारा अस्तित्व चला जाएगा, वो रुक नहीं सकता व्यक्ति। और कुछ लोग तो माइक को प्राप्त करने के लिए जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? माइक हो, जिसमें मैं क्या करूं, केवल मेंढक की तरह टरटर करते रहो, बोलते रहो। तो बल्कि महाप्रभु हमें कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि। तो ये जो वाणी का वेग है इतना प्रभावशाली है कि इससे शास्त्र कहते कि तीन चीजें हमारे जीवन में हो सकती हैं। एक तो पहली चीज क्या है, इसका दुरुपयोग से तीन चीजें होगी। पहली चीज है कि ये हमारा जीवन डिस्ट्रॉय या ध्वस्त कर सकती है वाणी, या तो दूसरों का जीवन उध्वस्त कर सकती है। और इस वाणी का सबसे भयावह खतरनाक जो रूप है, कई बार होता है ना, अलग अलग रूप आपको अलग अलग भक्तों के नजर आते हैं, अलग अलग सिचुएशन में। आप अलग अलग सिचुएशन में डाल दो भक्त को, तो उनका पहले सौम्य रूप नजर आएगा, बड़े शांत है, विनम्र है। थोड़ा सा उनको और बॉइल करो तो और थोड़ा सा भयावह खतरनाक रूप उनका प्रकट होगा। और थोड़ा बॉइल करो उनको तो नरसिंह रूप उनका प्रकट होगा। तो इस प्रकार से इसका वाणी का भयावह रूप क्या है? वैष्णव अपराध। क्या है? वैष्णव अपराध। उसी को ही चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं हतिमत्त अपराध। हतिमत्त, हति पागल, हति का जो अपराध है वो वाणी का है। हाँ, वो उसको छह प्रकार के वैष्णव अपराध है, उसमें यह है निंदंती। हाँ, क्या? निंदा करना। निंदा कैसे करते हैं? हम जिह्वा से बोलते रहते हैं। और तीसरी चीज क्या है कि हम किसी व्यक्ति को अपनी वाणी के द्वारा उत्साहित या प्रेरित कर सकते हैं भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए या भगवान से दूर जाने के लिए। हमें सबको अनुभव है, कई बार हम सब ने गलतियां की होगी। नहीं, नए नए भक्ति में आते हैं तो कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, थोड़ा सा पता होता है लेकिन बोलने की चीज कितनी होती है? बहुत ज्यादा। बेचारा कोई नया नया भक्त कोई आता है तो उसको वो कुछ एक प्रश्न पूछे तो पूरा आधा घंटा उत्तर दे देके उसका सर में बैठ जाते हैं, उसको डांट डांट के। हाँ, कि तुम गधे हो, हाँ तुम कुत्ते हो, तुम ए हो, हाँ जो भगवान की सेवा नहीं करता वो पशु है। नहीं, मनुष्य और पशु में चार प्रकार के भेद है। तो पहले दिन इतना अधिक उसके ऊपर डंडे मारते हैं कि बेचारा भाग जाता है। तो इसलिए वाणी का उचित इसलिए कहा गया है कि कैसे हमें अपने वाणी का, जैसे शास्त्र कहते हैं कि बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। जैसे खाने से पहले सोचते हैं ना, भूख लगती है तो नहीं सोचते, लेकिन पहले सोचते कि अरे ऑफर है नहीं है, किसने बनाया, कहाँ का है, क्लीन है कि नहीं है, हाँ ये सब सोचते हैं। तो वैसे ही हमें अपनी वाणी का इस्तेमाल करते समय हमेशा सोचना चाहिए या बोलना चाहिए। तो पहली चीज हम लेंगे कि कैसे ये जो वाणी है वो हमारा जीवन नष्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, या फिर दूसरे का जीवन भी। हाँ, जैसे मेंढक है, प्रभुपाद वाणी की बात आती है तो किसको पकड़ते हैं? प्रभुपाद ने कुछ पशुओं के ऊपर बहुत कृपा की है। नहीं, स्पेशल है। हाँ, जैसे सुअर के ऊपर तो कितनी कृपा की है, हमेशा सुअर। और फिर कुत्ते के ऊपर कुछ हो जाए, सेवा की बात आएगी तो हमेशा प्रभुपाद कहेंगे लोग किसकी सेवा में लगे हैं? कुत्ते की सेवा में लगे हैं। तो कई प्राणी बहुत ज्यादा कृष्ण भावना में इन्वॉल्व है। जितना हम नाम कृष्ण का नहीं लेते उतना नाम किसका लेते प्रवचनों में? इन प्राणियों का नाम लेते हैं। हाँ, कुत्ते का, फिर बिल्ली का, फिर सुअर का, फिर ऊंट का, फिर गधे का, और कौन सा बचा? चूहे का। और कोई याद आ रहे आपको प्राणी?
हाथी का,
हाथी का भी लेते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्राणी हैं। तो प्रभुपाद जैसे वाणी की बात आती है तो वो कहते हैं कि मेंढक बैठता है संध्या का समय जब होता है, विशेष रूप से बारिश के दिनों में। शहर में तो मेंढक ही नहीं रहे शायद, हाँ। तो बारिश के दिनों में गांव में अब संध्या का समय होता है तो चारों ओर मेंढकों की टरटर सुनाई देती है, आवाज आती है। और प्रभुपाद कहते हैं कि मेंढक किसको बुला रहा है? सर्प को बुला रहा है। तो वैसे ही हम भी, हमारे पास नया ये हम मेंढक के डिसाइपल हैं, तो ये भी छोटा मेंढक लेके घूम रहे हैं, उसके संग से हम भी मेंढक बने हैं। मोबाइल से क्या करें, मेंढक की तरह काम नहीं है, मतलब टर टर पूरे दिन लगे रहते हैं। और हम आमंत्रण कर रहे हैं, माया आओ और मुझे क्या करो, खा लो। तो इस प्रकार से हमारी स्थिति है। तो ये जो इसलिए वाणी का एक दुष्परिणाम डिस्ट्रॉय करने के लिए मोबाइल हमें क्या करता है, बहुत अच्छी हेल्प करता है। हाँ, तो इसलिए एक उदाहरण देते उपनिषद कि कई बार हमें अपने वाणी का बड़ा गर्व होता है। हाँ, जैसे उपनिषद कहते हैं कि एक गांव था, उसमें बहुत सारी मुर्गियां थी, उनमें एक मुर्गा बिल्कुल हट्टा कट्टा था और इतनी मधुर उसकी वाणी थी, और वो जब गाता था ना, मुर्गा देता है ना सुबह के समय में आवाज देता है जिससे लोग उठ जाते हैं। जैसे द्वारका में कृष्ण मुर्गे की आवाज से ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे। अभी हमें मुर्गे की आवाज हो या किसी की भी आवाज हो, हम उठने के लिए तैयार नहीं है। अभी मोबाइल्स में तो मुर्गे की भी आवाज का अलार्म होता है, बहुत सारे ट्यून्स होते हैं। अभी जिसको नहीं उठना उसके लिए मुर्गा उच्चारण करे या कुछ करे, नहीं उठेंगे हम। हाँ, लेकिन भगवान अपने आचरण से सीखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होते ही व्यक्ति को अनासक्त हो जाना चाहिए अपने बेड आदि से और उठ जाना चाहिए। उठते ही कहते कि पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हम रोज उनके ऊपर चरण आदि रखते हैं। आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करना चाहिए, कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए, और तुरंत ही इस भावना का उदय होना चाहिए कि कृष्णा आपका धन्यवाद है कि आपने आज भी पूरा दिन मेरे लिए तैयार रखा है कि आज मैं पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाऊं। हाँ, कभी हम सोचते हैं कृष्ण के बारे में सुबह उठते हैं? नहीं, सुबह उठते ही शुरुआत हो जाती है, क्या मुझे कुकिंग करना है या फिर ऑफिस में क्या करना है, किसी के साथ कुछ हो गया हो ना, तो उसी के बारे में सुबह से सर गर्म रहता है, सोचते रहते हैं। तो इस प्रकार से वो मुर्गा इतना अच्छा गाता था, उसका गला इतना मधुर था कि सारा गांव उनकी प्रशंसा करता था। और वो गांव के लोग बेचारे दिन में खेती करने के लिए चले जाते थे दूर गांव से बाहर खेती करने के लिए, तो ये सारे मुर्गे मुर्गियां आदि सब घूमते रहते थे खाने के लिए पूरे गांव में। लेकिन गांव से बाहर जो जंगल था उसमें सियार हुआ करते थे, और वो सियार हमेशा आते थे गांव में कि किसको ढूंढ रहे वो, खाने के लिए कोई मुर्गा हो मुर्गी हो। तो वो आते थे, जैसे वो सियार आते थे गांव में तो सारे मुर्गे मुर्गियां ऊंचे स्थान में उनको थोड़ा सा उड़ना आता है, उड़कर दूसरे ऊंचे स्थान में जाके बैठ जाते थे और नीचे देखते थे। तो सियार, अभी सियार जैसा दुष्ट प्राणी और क्या कहते, धूर्त, सही शब्द है, धूर्त कोई नहीं है। हाँ, तो सियार बड़ा धूर्त है, वो भी अपने वाणी का सही उपयोग करता है क्या करने के लिए, शिकार करने के लिए। तो वो आया सियार, उन्होंने कहा देखो जो सबसे बड़ा हट्टा कट्टा मुर्गा था, और गाता भी अच्छा था, और कभी कभी प्रवचन भी देता था अच्छा। तो फिर वो नीचे से सियार ने कहा देखो आपकी इतनी महिमा हमने सुनी है, ये बे आज घुसुक त्रिभुवन, आपका जो यश है पूरे जंगल से लेकर गांव में और गांव के बाहर के एरिया में फैला हुआ है, और जंगल में भी आपके नाम की चर्चा करते रहते हैं। तो मैं ना इतने दूर से आया हो, आपके मधुर कंठ से आपकी मधुर वाणी सुनने की अभिलाषा है। तो उसने सोचा कि दाल में कुछ काला है, सियार आया है। तो उन्होंने कहा देखो मैं तो इतना मधुर गाता नहीं, फिर इन्होंने बहुत प्रशंसा करनी शुरू की, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि देखिए मैं अभी ना रो पड़ूंगा यदि आप नहीं गाएंगे, इतने दूर से चल के थक के प्यासा भूखा आया हूँ आपकी मानवाणी को सुनने के लिए। अभी वो पिघल गया, उसको लगा मेरी वाणी और मैं जो बोलता हूँ ना, मैं जब गाता हूँ तो लोग क्या पागल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, द्रवित हो जाते हैं। तो थोड़ा ऊंचा बैठा था वो मुर्गा, थोड़ा सा क्या हो गया, नीचे आ गए। तो और इसने प्रशंसा करनी शुरू की और उसके गुणों का बखान करना शुरू किया, तो मुर्गा और थोड़े नीचे आ गया। जैसे नीचे आ गया, कहा देखिए अभी मुझसे रहा नहीं जा रहा है, आप अपनी वो आवाज तान मारो, लंबी चौड़ी आवाज गान करो। तो मुर्गे को लगा जब मौका मिलता है किसी को इम्प्रेस करने का तो व्यक्ति छोड़ता नहीं है। ये जीवात्मा का ये नेचर है जिसके कारण वो जगत में सड़ रहा है ना। तो ऐसा जो मुर्गा था उसने अपनी आवाज ऊपर की, आंखें बंद की और जितना उसके पास बल था, जितना उसके पास शक्ति था, आवाज ऊपर करके गला तान के ऊंचे स्वर में एक क्या कहते हैं उसको, बांग बांग दी उन्हें। जैसे बांग उसने दी और आंखें बंद करके जोर से, तो उसी क्षण सियार आता और उसका गला पकड़ लेता है। तो उसी के भांति हमारी सिचुएशन है कि हम भी अपने वाणी का क्या करते, कई बार हमें अहंकार घमंड आदि होता है भौतिक जगत में, और जिसके वश में होकर हम भी इसी प्रकार से अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। कभी कभी हम थोड़ा सा कीर्तन क्या सीख लेते हैं, दो तीन ट्यून्स क्या आ जाते हैं हमें गाने के लिए, तो हम उस मुर्गे की तरह बनना शुरू हो जाते हैं। थोड़े से 10-12 प्रवचन क्या दिए, दो चार लोगों ने स्तुति क्या की, तो हम क्या बनने लगते हैं, उस मुर्गे की तरह बनने लगते हैं। तो इस प्रकार से वाणी का यदि सही इस्तेमाल हम नहीं करते तो निश्चित रूप से वो हमारे जीवन को बर्बाद किए बिना नहीं रह सकते। और फिर हम अनुभव करेंगे कि ये कृष्ण भक्ति रूपी रत्न जो मेरे हाथ में आया था उसको मैंने खो दिया है। तो इसलिए शास्त्र हमें हमेशा सावधान करते हैं। इंग्लिश में कहा गया है, द राइट वर्ड्स कैन ब्रेक ए पर्सन्स हार्ट। तो उसमें कई चीजें कही गई हैं कि जो सही शब्द हैं वो वास्तव में किसी व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं या किसी में उत्साह या इंस्पायर कर सकते हैं दूसरों को, और दुखी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी भी ला सकते हैं यदि हम सही इस्तेमाल अपने वाणी आदि का करते हैं। तो भगवान ने हमारे पास ये अमूल्य रत्न दिया है। कौन सा रत्न है? वाणी रूपी रत्न है। और ये रत्न बहुत लंबे जीवन के बाद हमें मिला है। हम हमेशा बोलते 84 लाख योनियां, लेकिन बाकी पशुओं की भी आवाजें हैं, लेकिन मनुष्य के पास वाणी कितनी शक्तिशाली, पावरफुल है, यूजफुल है। तो ये रत्न हमें कृष्ण से मिला है। तो ये जो वाणी है ये वास्तव में एक बाण की तरह काम करती है। ये क्या कर सकती है? बाण की तरह किसी के हृदय में घुस सकती है और उसको पूर्ण रूपेण मार सकती है। जैसे द्रौपदी के बारे में हम सुनते हैं महाभारत में, नहीं अभी इतना क्या बोलने की आवश्यकता है। हाँ, द्रौपदी, अब वो भी डिवोटी थी नहीं। हम भी कई बार थोड़ा सा अज्ञानता के कारण, रजो तमो गुण के कारण कई बार भटक जाते हैं। कई बार सोचते नहीं कि मैं किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, क्यों बात कर रहा हूं। ये सारी चीजें हमें सोचनी चाहिए। ये एक वैष्णव के लिए ये एटिकेट्स है, सदाचार है। हाँ, तो ऐसी द्रौपदी अपने सखियों के सहित थे। अभी इन लोगों ने इंद्रप्रस्थ जैसा महल क्या बना लिया इतना बड़ा, और वो दुर्योधन आ गया उनके महल में। हाँ, और वो इतना अद्भुत था, मई दानव के द्वारा निर्मित वो महल, हाँ, सभागृह आदि जो भी घर था, कि जहां चले तो ऐसे लगता था कि आगे जल है। जल की जगह क्या था? स्थल था, और स्थल की जगह जल था। तो अभी कोई भी भ्रमित हो सकता है। इवन आप कई मॉल्स आदि में जाते हो, कई स्थानों में हम लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। तो दुर्योधन गए तो जहां जल नहीं था वहां उसने धोती ऊपर कर लिया, ऊपर से वहां से रहे थे देखा, और फिर जहां जल था वहां लगा स्थल है। जमीन है, चलने लगे छाती तान के और जाकर पानी में गिर गए, तो ऊपर से हंसी और क्या बोला उन्होंने, हाँ। तो ऐसे कुछ स्लोगन हमें याद रखने चाहिए जो हमारे लिए बहुत शिक्षा, ऐसे नहीं कि छोटी बात है, छोटी बात नहीं। हाँ, ये मुंह बड़ा क्या है, छोटा मुंह है, लेकिन बातें क्या करता है, बड़ी बड़ी करता है और फिर बड़ी प्रॉब्लम उसको सहन करनी पड़ती है। तो ऐसे द्रौपदी ने बोला क्या, इतनी छोटी सी एक लाइन बोली लेकिन कितनी महंगी पड़ी, 13 साल के लिए वनवास और कितने सारे कष्ट झेलने पड़े एक प्रकार से। तो इसीलिए ये जो वाणी है जो किसी को क्या कर सकती है, छेद सकती है और परमानेंटली घाव बना सकती है। तो इसलिए हमें 2 आंखें दी हैं और 1 जीभ दी है, हाँ, कि हम क्या करें, देखे और उचित रूप से देखे और फिर विचार करके 1 जिह्वा से बोले, हाँ, सावधानी पूर्वक। और हमेशा जो भक्त है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सावधान किया है भक्तों के लिए। उपदेश अमृत में प्रभुपाद लिखते हैं, ग्राम्य वार्ता ना सुने बे काने, और ना जब आप जब भी किसी को मिलते हैं तो जो भगवान से रहित जो वार्ता है, जिसको क्या शब्द यूज किया है, प्रजल्पा। तो प्रजल्पा का मतलब है भगवान से अलावा, भगवान के अलावा जिन प्रकार की हम बातें करते हैं, कई बार हम भक्त मिलते हैं तो कभी भगवान के बारे में चर्चा नहीं करते, इधर उधर की बातें करते रहते हैं। बल्कि कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरे भक्त जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, मच्चित्ता मद गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम तुष्यंति क्षरमंति। जब मेरे भक्त मिलते हैं, हे अर्जुन, वो सदैव मेरे बारे में चर्चा करते हैं, मत चित्ता, उनका चित्त जिनमें जिसमें हमारा चित्त है वही चीज आपके जीवा से बाहर आएगी, ये निश्चित है। प्रभुपाद ने कहा कि कोई व्यक्ति जब मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक वो अपनी वाणी प्रकट नहीं करता या बोलता नहीं। जैसे एक सीआर था, वो एक दिन गांव में आया और आके किसी धोबी के यहाँ से भाग रहा था, तो धोबी के घर के बाहर कलर के ड्रम थे, हाँ, और धोबी शायद पीछे लगा होगा रात्रि के समय, तो वो सीआर बेचारा भागते भागते उस टब में गिर गया जिसमें अलग अलग कलर का पानी था। अभी जब निकल गया बाहर तो उसका जो असली कलर है वो चेंज हो गया था और दूसरा कलर उसके पूरे बॉडी में चढ़ गया था, और वो लेकर अपने को बचाने के लिए जंगल की ओर भागा। तब तक सूर्य उदित हो गया था और गया तो जंगल के प्राणी थोड़े से जग गए, तो देखा यह नया कौन व्यक्ति आ गया है, लगा ये तो राजा है, नया व्यक्ति नया प्राणी है। और इसको लगा सब आके मुझे प्रणाम कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, माला लेके आ रहे हैं, भोजन लेके आ रहे हैं, तो ये इतने भी क्या है, राजा का राजा बनने का ढोंग स्वीकार किया, कब तक राजा बनेगा। तो फिर गया बैठा रहा दिन भर, इवन सिम्मा शेर आदि भी चामर लेके उसको पहन कर रहे हैं। वो बेचारा है, अपना बैठा है, 2 पाव में और आसन है, सोने के लिए है, हिरन आदि मरे हुए मारकर ला रहे, उनको ऑफरिंग की जा रही है, आरती उतारी जा रही है। सीआर ने सोचा ये तो अद्भुत है, हाँ, ये धोबी के टब की कितनी बड़ी कृपा है। और फिर जैसे संध्या का समय हुआ ना, मायापुर में हम गए संध्या के समय में, शाम को 6 बजे जाते हैं तो सीआरओं की आवाज इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं, इवन आप चलोगे बाहर तो आपके सामने ही होते हैं, तो वो चिल्लाते रहते हैं। तो एक संध्या का समय हुआ तो दूर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते सीआर, हाँ, चिल्लाने लगते हैं। तो वहां वो चिल्लाने लगा दूसरा कोई, तो यहाँ ओरिजिनली सीआर था और अभी ढोंग कर रहा था कि मैं कौन हूं, राजा हूं। तो फिर जब वो चिल्लाने लगा तो इसने भी यहां से अपने गीत गाना शुरू किए और सुर में के, वो कहते ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा, उनका सुर उनके सुर में मिल गया। फिर असली जो राजा आदि थे सिम्मा आदि देखा कि ये तो कौन है, सियार है। तो वैसे ही है, बाहरी रूप से हमें लगता है कि अभी लोग कहते भक्त है, दिखने में कौन लग रहे है, भक्त है, तिलक धोती कुर्ता साड़ी गोपी ड्रेस सब पहना है, लेकिन जब हम अपने वाणी को खोलते हैं तो क्या पता चलता है हम कौन है? सियार है। इसलिए एक भक्त को बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति, इसलिए बहुत सीरियस वर्क है, सीरियस जॉब है। सियार जब बोलेगा शाम के समय में तब पता चला। तो वैसे हमारे साथ है कि हम भक्ति में आते समय गवाते हैं, लेकिन यदि हम अपने आप अपनी उन्नति नहीं करते, भगवत भक्ति में गंभीर नहीं होते, तो हम अंत समय तक क्या बने रहेंगे? सियार ही बने रहेंगे। तो इसलिए रूप गोस्वामी हमें सावधान करते हैं कि ये कितना आवश्यक है कि मूर्ख का पता तभी चलता है। प्रभुपाद ने कई जगह लिखा है अपने तात्पर्य में, भागवतम में, भगवद गीता आदि में लिखा है। तो इसलिए ये परम आवश्यक है। अभी जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था तो सब लोग एग्री हो गए कि राजसूय यज्ञ की पूजा के लिए कृष्ण ही नियुक्त किए जाने चाहिए। लेकिन उसमें एक व्यक्ति था जिनको ये बात अच्छी नहीं लगी। वो कौन थे? और उनके उन्होंने अपना अस्त्र खोल दिया, मुंह खोल दिया। मुंह खोला तो क्या उसका परिणाम निकला? हाँ, शिष्य अपना अलग हुआ, उनका जो स्तर है अलग करना पड़ा। तो मतलब इसलिए ये शास्त्र भरे पड़े हैं, इस वाणी का सदुपयोग और वाणी का जो दुरुपयोग है। इवन भागवतम के पहले स्कंद में परीक्षित महाराज के बारे में वर्णन आता है। परीक्षित महाराज शिकार के लिए गए और शिकार करते हुए करते हुए बहुत थक गए। थक के उनको बहुत भूख प्यास लगी, देखा कि नजदीकी कोई एक कुटिया है, आश्रम है, तो वहां वो चल पड़े। तो अंदर गए तो देखा श्रमिक एक ऋषि हैं बैठे हुए, ध्यान मग्न है। हाँ, लंबी दाढ़ी है, जटा फैली हुई है। और फिर वो गए कि अरे ये क्या है, मैं इतना बड़ा राजा हूं, मुझे स्वागत करना चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए, मेरे लिए कुछ जल पान आदि की व्यवस्था करनी चाहिए, शायद ये ढोंग तो नहीं कर रहा है। कई बार हमें लगता है ना सेवा से भागने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार होता नहीं कोई भक्त मुझे सेवा ना दे इसलिए ध्यानपूर्वक जप करते हैं। अलग अलग प्रकार होते हैं ध्यानपूर्वक जप करने के, कि सेवा से भागना चाहते हैं या किसी डिवोटिव से भागना चाहते, नेग्लेक्ट करना चाहते, चलो वो आ गए ना, प्रणाम करने से बचना है तो बेस्ट वे है जप ले लो, माला ले लो हाथ में, आंखें बंद करके क्या करो, जप करो। मतलब जीव इतनी अटकलें ढूंढता रहता है गंभीरता से भक्ति न करने के लिए, उसमें उसकी बुद्धि चलेगी। हाँ, तीव्र हमेशा। तो इसलिए भक्तों को हमेशा अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपने कार्यकलापों पर ध्यान देना चाहिए। तो जो परीक्षित महाराज गए उन्होंने कहा ये सही में ध्यान लगा रहा है या ध्यान लगाने का ढोंग कर रहा है। तो देखा ये तो कुछ नहीं कर रहा है, तो उन्होंने वह मरा हुआ सांप लिया अपने धनुष में और उनके गले में डाल दिया, गले में डालकर वो चले आए। तो जब भक्त के द्वारा कुछ गलत कार्य होता है तो तुरंत हृदय में महसूस होता है। हाँ, हमें सबको अनुभव है, महसूस होता है नहीं नहीं मुझसे कुछ गलती हो गई है। परीक्षित महाराज तो महान भक्त थे, उनको भगवान ने एक माध्यम बनाया, वो इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। वो उनके द्वारा हमें पूरा भागवतम प्रदान करना चाह रहे थे। तो फिर परीक्षित महाराज को वो महसूस होता है कि मैंने कुछ गलती मुझसे हुई है, तो सोचने लगे कि मैं तैयार हूँ कि मैंने एक महान ऋषि के प्रति अपराध किया है, चाहे मुझे दंड मिल जाना चाहिए, मेरा सारा धन ऐश्वर्य राज्य चला जाए, हाँ मैं वो दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये भावना वो सोचते सोचते अपने महल में जा रहे थे, हाँ कि मैं अधिकारी हूँ दंड प्राप्त करने का। तो लेकिन कुछ बच्चों ने, उनका जो बेटा है श्रमिक ऋषि का श्रृंगी, वह नदी में स्नान कर रहे थे, खेल कूद रहे थे, तो वहां उनको कहा अरे अरे तुम्हारे पिता के गले में उन राजा ने सांप डाला है। वो बच्चा था, इतना गुस्सा आ गया, उसने अपने वाणी का उपयोग किया, क्या किया, तुरंत जल वहां से उठाया और श्राप दिया कि जिसने भी ये घृणित कार्य किया है राजा ने उसका सातवें दिन में तक्षक सर्प के द्वारा डसकर मृत्यु हो जाए। तो ये वाणी का इस्तेमाल बिना किसी सोचे समझे श्रृंगी ने किया, जिसके द्वारा महान राजा परीक्षित को ये मृत्यु को स्वीकारना पड़ा एक प्रकार से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वाणी के द्वारा हम दूसरों का जीवन भी बर्बाद कर सकते हैं और दूसरों के जीवन में कलह पैदा कर सकते हैं। रामायण में मंथरा देवी, कौन सी देवी? हाँ, तो हमें मंथरा बनना है तो सोचना होगा। मंथरा, मंथरा नाम की जो माता जी हैं, तो वो बेचारी कई कई इतनी अच्छी डिवोटी थी। किसकी डिवोटी थी? राम की। राम की सेवा के अलावा उनको कुछ आता नहीं था, बल्कि आपने भरत से इतना प्रेम नहीं करती थी जितना प्रेम भगवान राम से करती थी। कहा जाता है कि कौशल्या से भी अधिक सतर्क रहती थी कई कई। कई कई एक दिन बैठी थी झूले के ऊपर, हाँ कुछ फ्रूट्स फल कुछ खा रही होगी, अकेली थी, तो ये मंथरा आई, मंथरा देवी आई और आकर उन्होंने क्या किया, कैकेयी के पास गई। ऐसे देखा जाता है कई बार हम बहुत अच्छे होते हैं भक्ति में, हाँ लेकिन कई कई हमें कौन मिल जाती है? मंथरा। तो मंथरा आई और उसने बोलना शुरू किया अपना वाणी। मंथरा का वाणी बहुत पावरफुल था, मतलब हम थोड़े से ढीले हो जाते ना तो मंथरा जैसी देवी आके हमें कान भर देती हैं। हमारे कान पहले से फुल करने चाहिए किससे?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो अभी यदि हम सुबह अपने कान कृष्ण नाम के द्वारा, कृष्ण कथा के द्वारा भरेंगे नहीं, खाली रखेंगे, तो कोई ना कोई मंथरा देवी दासी आएगी और वो क्या करेगी, हमारे जो रिक्त ड्रम्स हैं, हाँ खाली हैं, ये भरे बिना नहीं रह सकते। हाँ जैसे कई लोग ना बहुत सुनने के ये होते हैं, कहते खाली खाली लग रहा है। कुछ होते हैं जिनको कुछ ऐसी चीजें सुने बिना नींद नहीं आती, ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की। कुछ भक्त होते हैं बहुत दिन हो गए कुछ ऐसे ही ना मसाला सुना नहीं, निंदा सुनी नहीं, कुछ ऐसी चीजें तो ढूंढते भक्त, कौन सा ऐसा भक्त है उसी के पास चले जाएंगे और उससे फिर कृष्ण कथा या ऐसे दोष कथा करते रहेंगे। तो मंथरा देवी गई और कई कई को बताने लगी, हाँ अब मूर्ख तो नहीं हो, ऐसे ऐसी भाषा बोलने लगी मंथरा। उन्होंने कहा तुम्हारे तो अभी बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, और आप देखो अभी राम का राज्याभिषेक हो रहा है, कल ही तो राजा बनने जा रहे हैं, कौशल्या राजमाता होगी और आप तो सड़क में आपका आपको भिक्षा मांगनी पड़ेगी, कोई आपको मान सम्मान आदि नहीं मिलेगा। तो इतनी सारी बोलते गए उन्होंने कहा, बल्कि शुरुआत में मंथरा क्या बोल रही हो थोड़ा सा था, लेकिन जब प्रभावशाली वक्तव्य जब सुना कैकेयी का इसका मंथरा का, तो कैकेयी पूर्ण रूप से परास्त हो गई, उसके कान इतने भर गए इतने भर गए। अभी राम नाम ले भी तो वो गुस्सा हो जाता था उसको, नहीं वैसी सिचुएशन है कि मंथरा के वाणी के द्वारा कैकेयी ने सीधा भगवान राम को अपने जीवन से और दूसरों को जीवन से बाहर कर दिया। तो इसलिए हम भी ऐसी वाणी को यदि सुनते हैं ऐसे बैड एसोसिएशन में, अपने जीवन से हम कृष्ण को हटा देंगे और फिर जो भी हमसे संबंधित है उनके जीवन से भी हम कृष्ण को बाहर कर देंगे। हाँ तो ऐसा प्रभाव इस वाणी का है, इसलिए हमेशा शास्त्र कहते कि सतर्क रहे, कि पहली चीज है वाणी का कि हमारा जीवन उद्ध्वस्त तहस नहस कर सकती है यदि इसका दुरुपयोग होता है, और दूसरा है दूसरों का जीवन भी। तो दूसरी चीज है कि इसका महाभयावह रूप क्या है, वैष्णव अपराध। तो वैष्णव अपराध जिसके कई सारे उदाहरण हैं, चैतन्य चरितामृत में उदाहरण आता है सार्वभौम भट्टाचार्य के जामाता या जमाई, कौन थे? अमोघा। कौन थे? अमोघा। तो ये अमोघा महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने और उनकी पत्नी ने बहुत सारे व्यंजन बनाए कि आज चैतन्य महाप्रभु को हमारे घर में प्रसाद के लिए बुलाएंगे, तो उन्होंने कुछ ही समय में इतने सारे व्यंजन बनाए। चैतन्य महाप्रभु आए कहा रे सार्वभौम भट्टाचार्य अभी अभी तो तुम मुझे इनविटेशन देके आ गए थे, इतने कम समय में इतने सारे व्यंजन कैसे बनाए? उन्होंने कहा आपकी कृपा के कारण। और बनाए कितने? पूरा इससे बड़ा रूम था जो भर गया था, और खाने के लिए कितने व्यक्ति? एक। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बैठे, उन्होंने कहा कि मुझे ना एक अलग से एक थाली लेके आओ और जो भी बॉयल सब्जी वगैरह है वो दे दो, मैं आपको खा लूंगा। हाँ, सन्यासी है, इन सब चीजों से दूर होना चाहिए, अच्छे अच्छे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को सौरभ भट्टाचार्य कहते क्यों इतना ड्रामा कर रहे हो, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के रूप में तो सीधा उंगलियां कभी सूखती नहीं है, मतलब ड्राई नहीं होती, हमेशा गीली रहती है, इतना खाते रहते हो। द्वारका में 16,108 पत्नियों के घर में और आपने इतनी सारी माताएं हैं उनके घर में हर रोज खाते हो, और यहाँ क्या होगा, आपके लिए कुछ ना के बराबर है, कुछ ही ग्रास है। फिर महाप्रभु भक्त के प्रेम से बैठ जाते हैं और फिर शुरुआत करते कि नहीं, तो शुरुआत किया उन्होंने। तो वह सार्वभौम भट्टाचार्य को पता था कि मेरा जो जमाई है, हाँ, जो बेटी का जो पति है उसके अंदर एक दोष है। क्या दोष है? वो दूसरों का दोष देखता है और कुछ ना कुछ कमेंट करता है, बोलता रहता है। तो फिर उनको पता था कि उसको अंदर आने नहीं देना चाहिए, वो अंदर आके देखेगा कि क्या हो रहा है तो फिर कुछ ना कुछ घटना घटित हो सकती है। उन्होंने डंडा अपने हाथ में रखा, लेकिन वहां उनकी पत्नी अंदर किचन में थी, किचन के साथ ही वो रूम था अलग से बनाया था चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसादम के लिए, तो किचन के बीच में दरवाजा था। तो उन्होंने कुछ बनाया, कहा आइए आप अंदर कुछ ले जाइए महाप्रभु के लिए। तो बेचारे गए अंदर, तब तक ये अमोघा जी आ गए, अमोघा प्रभु आ गए अंदर, और आके उन्होंने कहा ये क्या है, सन्यासी, एक सन्यासी इतने लोगों का भोजन खा रहा है। हाँ, तो ऐसा कुछ बोल दिया, सार्वभौम भट्टाचार्य गुस्से हो गए, मतलब महाप्रभु की निंदा की वाणी के द्वारा। और फिर वो महाप्रभु को तो कुछ ये नहीं चला, उन्होंने कहा ठीक है मेरी निंदा की कोई स्वीकार नहीं किया उन्होंने उस चीज को। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य को बहुत क्रोध आया, उन्होंने डंडा लिया उसके पीछे भागने लगे। उन्होंने कहा मेरी जो बेटी है वो विधवा हो जाए, हमें ऐसा जमाई नहीं चाहिए जो वैष्णव अपराधी हो, भगवान का द्वेषी हो। तो फिर वो बहुत दुखी हो गए, रोने लगे, महाप्रभु ने प्रसाद पाया और चले गए। तो ये जो पति पत्नी थे इन्होंने कहा कि हमने तो महाप्रभु को अपने घर में बुलाया था अपमान करने करवाने के लिए, बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा हम भोजन नहीं करेंगे, शाम तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, बहुत दुखी थे, रोया कर रो रो रहे थे। फिर गोपीनाथ आचार्य, उनके जो सार्वभौम भट्टाचार्य की बहन के जो पति हैं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी कुछ खा नहीं रहे हैं, रोते जा रहे हैं, और उनका जो जमाई है वो हैजा की बीमारी के कारण, मतलब कॉलरा के कारण एक जगह लेटे हुए और मरने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु तुरंत आते हैं, कहते कि कहाँ है वो अमोघा। चैतन्य महाप्रभु गए और उस अमोघा के पास गए और उसके छाती पर हाथ रख के कहा कि हे अमोघा, तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का हृदय कृष्ण का निवास स्थान होना चाहिए, तुमने ये ईर्ष्या को कैसे स्थान दिया अपने हृदय में, इस ईर्ष्या द्वेष आदि को हटाओ और कृष्ण नाम का उच्चारण इस वाणी से करो, जिस वाणी से क्या किया है तुमने, दोष आदि अपराध आदि की चर्चा की है। तो उठते और कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं। तो इसीलिए वास्तव में जिस वाणी से हम जहर पीते हैं उसी वाणी से हमें अमृत पीना चाहिए। जहर क्या है? वैष्णवों की, भक्त आदियों की निंदा आदि करना, भौतिक वार्तालाप में अपनी वाणी को अधिक से अधिक लगाना, वो जहर है। उसी को कहा है जानिया सुनिया विष खाइनो, जानबूझ के विष का पान करना। लेकिन महाप्रभु कह रहे जिससे आप विष पीते हो उसको छोड़ो और उससे अमृत का पान करो, कृष्ण कथामृत का पान करो। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, सौवरी मुनि, रामचंद्रपुरी, चैतन्य चरितामृत में आता है। और तीसरी चीज है कि ये जो वाणी है ये दूसरों को प्रेरित कर सकती है कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए, या कृष्ण की शरणागति से दूर ले जा सकती। जैसे मंथरा ने कैकेयी को कृष्ण की सेवा से दूर हटा दिया। तो जैसे हिटलर था, वो पूरे जर्मनी आदि कई सारे सैनिकों को, लोगों को कंट्रोल करता था, कैसे, रेडियो में केवल टॉक देता था बोल बोल के। हाँ, उसकी वाणी का इतना प्रभाव था कि लोग उसके लिए मरने के लिए तैयार थे। जब हिटलर किसी गाड़ी में जाता था और बीच में कोई गड्ढा हो बड़ा सा, तो एक साथ हजारों सैनिक गड्ढे में कूद लगाते थे, और उनके ऊपर से गाड़ी उस ओर जाया करती थी। मतलब देखो कैसे इतने शरणागत हो रहे थे वाणी के द्वारा। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी यदि हम हमेशा भक्ति में प्रेरित रहना चाहते हैं, इंस्पायर्ड होके रहना चाहते हैं, तो हमेशा हमें कृष्ण कथा का या वाणी का, भगवत वाणी या भक्तों के वाणी का श्रवण करना चाहिए। इसलिए भगवान ने भगवत गीता रूपी जो स्वयं की वाणी है वो हमें प्रदान की है। हाँ, तो इस वाणी का सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, हाँ इसको कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। एक तो सदैव इस जीवा से कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। यदि हम रोज सुबह बहुत क्लियरली सिंसियरली सरल रूप से जप करेंगे 2 घंटा, तो फिर आप देखेंगे कि ये वाणी आपको सताएगी नहीं, ये वाणी एक अमूल्य रत्न बनेगी। और ये वाणी फिर कृष्ण का गुणगान किए बिना नहीं रह सकती। तो वाणी की तपस्या ही है भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में ये वाणी का तपस्या यही है कि कृष्ण के विपरीत बातों से दूर रहना, उनकी चर्चा आदि न करके भगवत चर्चा में सदैव हमें लगे रहना चाहिए। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सदैव ये जो वाणी है इसका इस्तेमाल कृष्ण कथा के लिए करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद एक बार कुरुक्षेत्र गए थे, महाराज हमें से प्रवचन में बताते हैं, तो किसी प्रभुपाद के एक शिष्य ने देखा कि सारे लोग कुरुक्षेत्र का जो मेला था सूर्य ग्रहण के समय में, सारे लोग एक साधु को देखने जा रहे थे। वो कई साल से उसने यहाँ एक लॉक लगा के रखा था, बोलता नहीं था, मौन था। तो प्रभुपाद ने कहा उससे में क्या इतना बड़ा आश्चर्य है, असली मौन क्या है, कृष्ण के बारे में अधिक से अधिक बोलना। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि मुझे हमेशा बोलते रखो, मुझे कभी चुप मत रखो। हाँ, भक्त का गुण है सदैव बोलते रहना चाहिए कृष्ण के बारे में। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मुझे बोलते रखो। इसलिए वो कहते थे भक्ति सिद्धांत महाराज, कृष्ण कथा इज लाइफ। एक भक्त का जीवन क्या है, असली कृष्ण कथा है, कृष्ण का वर्णन करना। तो प्रभुपाद ने कहा मुझे बोलते रखो, उसका मतलब है उस समय भी जब प्रभुपाद थे तो उनके शिष्य हमेशा प्रभुपाद के लिए प्रोग्राम्स अरेंज करते थे, मॉर्निंग वॉक में जाते थे तभी भी प्रभुपाद बोलते रहते थे, और फिर रूम में होते थे तो भी कन्वर्सेशन, अलग अलग बड़े बड़े लोगों से मिलते थे, और जब रूम में होते थे तो ग्रंथों को लिखते थे। वो कैसे लिखते थे, डिक्टाफोन के द्वारा बोलते रहते थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते कि भक्त का जीवन बना ही है बोलने के लिए, और ये बेस्ट इस्तेमाल है वाणी के वेग को कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद को बोलते रखना है तो उनके ग्रंथों को वितरण करना होगा। तो प्रभुपाद जितना जाएंगे बुक्स, उतने मात्रा में प्रभुपाद हर एक व्यक्ति से बोलते रहेंगे या बात करते रहेंगे। और ये साधु का प्रमुख लक्षण है एक भक्त का। हाँ, प्रभुपाद को जॉर्ज हैरिसन ने पूछा कि जो आध्यात्मिक गुरु है या प्रचारक है वो उसका प्रमुख लक्षण क्या है, तो प्रभुपाद ने कहा जो कृष्ण के लिए पागल है वो वास्तव में असली प्रचारक है। हाँ, तो कृष्ण के लिए पागल का मतलब ही है कि कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, गुण लीला आदि के उच्चारण में जो व्यक्ति सदैव लगा रहता है वो वास्तव में कृष्ण के लिए पागल है। जैसे हम क्या करते हैं, घर में चैंटिंग बॉक्स लगा के रखते हैं, नहीं, और अपना बॉक्स किसी और के लिए यूज करवाते हैं, नहीं, चैंटिंग बॉक्स प्रभुपाद आप बोलते रहिए, मैं तो बोलने के लिए मेरे पास बहुत विषय है, यही बोलते रहूंगा कृष्ण कथा, तो बाहर बाकी चीजें कौन बोलेगा। हाँ, तो इस प्रकार से हम चैंटिंग बॉक्स, अपना चैंटिंग बॉक्स क्या करो, ऑन रखो हमेशा, उसको हम बंद रखते हैं और इधर उधर उसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो इसलिए ये चैंटिंग बॉक्स हमें दिया है। तो इसलिए एक श्लोक आता है शास्त्रों में जिसमें कहा गया है कलयुग में सबसे बेस्ट उपाय है अपने उद्धार का, ओष्ट स्पंदन मात्रेन कीर्तनम तु ततोवरम। ओष्ट मीन्स ओट, हिलाने मात्र से क्या करना है, कीर्तन, और ये इसके द्वारा ही इस भयावह कलयुग से व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। तो भगवान ने हमें कई प्रकार की गिफ्ट दी है, अभी हमें कोई छोटी मोटी गिफ्ट देते हैं तो कितना प्रशंसा करते हैं, नहीं करते कि नहीं? कुछ अनुभव है आपका किसी का, बताइए, किसी ने आपको गिफ्ट दिया और पूरा प्रशंसा में समय बिताया, बताइए। तो लेकिन हमें कृष्ण ने, अब सोचो कृष्ण ने हमारे जीवन में कितने सारे गिफ्ट्स दिए हैं, वाणी कितना अच्छा रत्न है, वाणी है, देखने की शक्ति आदि है, तो ये वाणी रूपी जो गिफ्ट हमें मिली है उसका इस्तेमाल उस व्यक्ति के गुणगान में करना चाहिए जिस व्यक्ति ने हमें ये गिफ्ट दी है, जो क्रिएटर है भगवान कृष्ण है। तो इसलिए हम जो भी बोलते हैं उस बोलने से पूर्व हमें सोचना चाहिए क्या मैं जो बोल रहा हूँ ये आवश्यक है या नहीं है। वाणी से जब भगवान के अलावा चर्चा करते हो आप अपनी शक्ति का शक्ति खो बैठते हो, जितना आप कृष्ण के बारे में बोलोगे उतनी आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति संचारित हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं उद्धव को 11वें स्कंद में, उद्धव गीता में, कि जो व्यक्ति अपने वाणी से मेरा गुणगान नहीं करता उस व्यक्ति की वाणी यूजलेस है, एक प्रकार से निरर्थक है। और इसलिए अम्बरीश महाराज इतने बड़े राजा थे तो उन्होंने वाणी को कैसे भगवान की सेवा में लगाते, वाणी गुणानुकथने, वाणी का इस्तेमाल भगवान के गुण और कथा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसलिए हम गुरु की सेवा की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है गुरु की सेवा में, वाणी की सेवा। गुरु की कौन सी सेवा, वाणी, उनके जो आदेश है वपु सेवा से भी। तो इसलिए वाणी को जानना, वाणी को समझना एक भक्त के लिए परम आवश्यक है। जब हम आध्यात्मिक वाणी को सही रूप से सुनेंगे तो उसी प्रकार से हम उसका उच्चारण कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम उसका वर्णन कर सकते हैं। और इसलिए प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में आता है गौरवाणी, जोर से बोलिए
गौरवाणी,
तो गौरवाणी, गौर कौन है, गौरांग महाप्रभु है। तो हमारी वाणी का इस्तेमाल गौरवाणी के लिए होना चाहिए। और गौरवाणी क्या कहती है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो गौरवाणी कह रही है कि आप जिसको भी मिलोगे उसको कृष्ण का उपदेश प्रदान करो। तो इस प्रकार से जो भक्त है अपने वाणी का इस्तेमाल करता है, और जो एक वैष्णव होता है उसकी वाणी को कृष्ण मैनेज करते हैं, कृष्ण कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो सदैव भगवान पर निर्भर रहता है। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम, कि भगवान एक मुख व्यक्ति को भी इतना सामर्थ्य देते हैं कि वो उनका गुणगान करता है। इसलिए हमारे पास बोलने की शक्ति है लेकिन हमारे पास भगवत गुणगान करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अनंत शेष जो उनके हजारों मुखों से एक ही काम करते हैं, हजारों अनंत सालों से भगवान का गुणगान करते हैं। तो जो भगवान जब देखते हैं कि ये भक्त मेरी ओर आना चाहता है और अपने वाणी से मेरा गुणगान करना चाहता है तो कृष्ण उसके वाणी को मैनेज करते हैं। जैसे रामानंद राय, चैतन्य महाप्रभु जो दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो वहां उनको एक भक्त मिले जिनका नाम था रामानंद राय, मद्रास के गवर्नर थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, रामानंद राय एक गृहस्थ थे। वो मिले, उनका आलिंगन किया और कहा कि हे रामानंद राय, मैं इतने दूर से आया हूँ जगन्नाथपुरी से, दक्षिण भारत की यात्रा का मैंने बहाना बनाया लेकिन मैं तुम्हें मिलने आया था और तुमसे सुनने के लिए आया था। तो रामानंद राय के द्वारा चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति के सारे तत्वों को सुनते हैं और फिर रामानंद राय कहते कि आप साक्षात भगवान हो, मैं क्या वर्णन करूंगा कृष्ण भक्ति का। तो रामानंद राय कहते हैं कि वास्तव में आप वीणा बजाने वाले हो, वीणा अपने आप में आवाज थोड़ी निकालती है, कोई बजाने वाला होना चाहिए ना। तो उसी प्रकार से वैष्णव के मुख से वास्तव में कृष्ण बोलते हैं या कृष्ण उनकी वाणी को मैनेज करते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज भी लिखते हैं कि मुझमें ना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं जब चैतन्य चरितामृत लिखता हूं तो मेरे हाथ कंपन हो रहे हैं, मेरी आयु 90 साल की हो गई है, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, लेकिन एक आश्चर्य है कि ये महाप्रभु के गुणों को मैं कैसे लिख रहा हूं या बोल पा रहा हूं। इसलिए कृष्णदास कविराज ने कहा, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन जो चैतन्य भागवत ग्रंथ में किया है, तो कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में कहते कि उनके मुख से कौन बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु। वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। तो इसलिए हमें भक्त बनने के लिए ये जो वाणी है बहुत सहायक है, बहुत अधिक हमारे जीवन में प्रकाश ला सकती है और जीवन में अंधकार भी। तो हमें चूज करना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में प्रकाश की ओर जाना है या अपने जीवन को अंधकार की ओर ले जाना है। तो इसलिए रूप गोस्वामी उस जो पहला शब्द है वाचो वेगम, उसके बारे में चर्चा करते हैं उपदेशामृत में, और फिर अलग अलग छह वेगों का वर्णन करते हैं। तो एक भक्त को रूप गोस्वामी का वो जो ग्रंथ है उपदेशामृत बहुत मूल्यवान है और बहुत मधुर है, बहुत शिक्षाप्रद है, पढ़ना चाहिए और उन शिक्षाओं को समझना चाहिए। तो इसलिए इस वाणी को अधिक से अधिक हम इस्तेमाल करें कृष्ण से संबंधित कार्यों में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।